Jai Radha Madhava Kunja Bihari.
यह प्रवचन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 श्लोक संख्या 11 और 12 पर मुंबई भारत में 4 मार्च 2004 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारी भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आदरणीय भक्तजन, आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय जिसका नाम है कर्म योग के 2 श्लोकों पर प्रवचन देंगे। यह है श्लोक नंबर 11 और 12। इन 2 श्लोकों की संस्कृत इस प्रकार से है। देवन भवयिता नैना ते देवा भवयन्तु वः परस्परं भवयन्ता श्रेया पदम अवप्स्यथा इष्टां भोगन ही वो देवा दश्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तम अपराधया भियो यो बुनक्ते स्तेन एव साहा। इनका अनुवाद इस प्रकार से है। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। भगवद गीता का संदेश आज के वातावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता का दिव्य संदेश है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं, किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं। इस अध्याय में भगवान ने यह बताया है कि परम भगवान को सहयोग देने में अनेक देवता हैं जो कि अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं, जैसे कि साधारण स्थिति में देशों में राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को सहयोग देते हैं अनेक मंत्री। इसी प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण को 33 करोड़ देवता और देवियां सहयोग दे रहे हैं, और इन सब देवताओं और देवियां जो हैं ये अधिकार प्राप्त प्रशासक है जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, और सृष्टि के द्वारा जो सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही हैं ये सब सुविधाएं जो हैं देवताओं के अधिकार में है। तो भगवान एक विषय पर बल दे रहे हैं इन 2 श्लोकों में कि हमें यज्ञ जरूर करना चाहिए। थोड़े 2 श्लोक पहले आपने सुना था कि भगवान ने जब सृष्टि की स्थापना की उन्होंने कहा कि असली खुशी प्राप्त हो सकती है यज्ञ के द्वारा। तो यहां कहा जा रहा है यज्ञों के द्वारा प्राप्त होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। आज हमें संपन्नता चाहिए, आर्थिक उन्नति चाहिए, हर प्रकार की सुविधा चाहिए, पर हम ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि ये सब सुविधा जो है प्राप्त हो रही हैं परम भगवान की असीम कृपा के द्वारा। जो व्यक्ति शास्त्रीय ज्ञान रखते हैं, जिन्होंने प्रमाणिक शिक्षा प्राप्त की है, वो समझ सकते हैं कि देवताओं द्वारा भी जो वर प्राप्त हो रहा है, असल में वो वर प्राप्त हुआ है परम भगवान की असीम कृपा के द्वारा। जैसे कि भौतिक उदाहरण है, अगर कोई सुविधा किसी मंत्री इत्यादि द्वारा प्राप्त हो तो हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने भी ये इजाजत दी है, जिसके द्वारा कोई मंत्री या कोई अधिकारी वो सुविधा हमें दे सके। तो भगवद गीता के द्वारा ये कहा गया है कि अनेक देवता हैं और अलग अलग देवताओं को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे कि सूर्य के देवता विवस्वान, उनके द्वारा हमें सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है, चंद्रमा के द्वारा भी रोशनी प्राप्त होती है, और अग्नि के देवता के द्वारा अग्नि आती है, इंद्र जी की कृपा से वर्षा की प्राप्ति होती है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि देवताओं द्वारा ये जो सुविधा आ रही है, उसके बदले में हमें देवताओं की प्रसन्नता के लिए भी यज्ञ करना बहुत ही अवश्य है। ये जो अन्य देवता हैं, परम भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है, और श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि सारे देवता परम भगवान की प्रशंसा करते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये देवता परम भगवान से स्वतंत्र हैं या उनके समान हैं। शास्त्रों में स्थापित किया जाता है कि जो अनेक देवता हैं, ये उनके अधीन हैं, और जब हम देवताओं की प्रशंसा के लिए कार्य करते हैं तो इसके द्वारा मानव समाज भी सुख प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। भगवान कहते हैं गीता में अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, और वर्षा प्राप्त होती है जब हम धर्म के नियमों का पालन करें, और जब हम धर्म के नियमों का पालन करेंगे तो हमें प्रकृति द्वारा पूरा सहयोग प्राप्त होगा, और जब हम यज्ञ इत्यादि का पालन नहीं करेंगे तो प्रकृति भी हमें साथ नहीं देगी। श्रीमद् भागवतम में एक बड़ी सुंदर कथा है। हजारों साल पूर्व एक राजा थे जिनका नाम था महाराज वेना। महाराज वेना बड़े घमंडी राजा थे। ये सोच रहे थे कि हर चीज उनके कारण प्राप्त हो रही है, और उनकी इच्छा थी कि पूरा समाज और ब्राह्मण भी उन्हें ही माने सर्वश्रेष्ठ, और भगवान की पूजा नहीं की जाए। तो महाराज वेना ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर हर प्रकार का यज्ञ समाज में रुकवा दिया, ब्राह्मणों के घरों को चला दिया, और सबसे कहा मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा किया आवश्यकता नहीं। ब्राह्मणों ने देखा कि ये दुष्ट बुद्धि का नेता है, और प्रजा भी दुखी हो गई। जब नेता या राजा भगवान की शिक्षा का पालन नहीं करे तो उसका ये परिणाम पूरे समाज पर प्राप्त होता है। और महाराज वीणा के समय, क्योंकि वो दुष्ट बुद्धि के थे, पूरा समाज दुखी हुआ और अंत में ब्राह्मणों ने श्राप दिया और जिसके द्वारा उनकी मृत्यु हो गई और उनके पुत्र पृथु महाराज राजा बने। महाराज वीणा के समय पेड़ों से फल निकलना बंद हो गया था, सागर लगभग सूख रहा था, पृथ्वी से अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा था और समाज की प्रजा अत्यंत दुखी हो रही थी। जब महाराज पृथु राजा बने, पूरी प्रजा ने उनसे निवेदन किया, हे राजा, तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम हमारी आवश्यकताओं को पूरा करो। हमें खाने के लिए अन्न चाहिए, रोटी चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए, मकान, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, कपड़ा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें खुद स्वयं कुछ नहीं दे सकता, पर अगर तुम सब परम भगवान का गुणगान करोगे तो देखोगे कि हर प्रकार की आवश्यकता प्राप्त हो जाएगी। और राजा के वचनों पर प्रजा की पूरी श्रद्धा थी और उनके कहने के अनुसार उन्होंने भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण आरंभ किया, जिसके द्वारा ये परिणाम हुआ कि हर प्रकार की आवश्यकता पूरी होने लग गई और जो कमियां थी वो सब दूर हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है इन उदाहरण के द्वारा कि हम परम भगवान और उनके प्रतिनिधियों को प्रसन्न कर सकते हैं यज्ञ के पालन के द्वारा। हमें भूलना नहीं चाहिए ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है वो बहुत ही कठिनाई के साथ प्राप्त होता है। 84 लाख किस्म की योनियां हैं और इन सब योनियों में गुजरने के पश्चात, 80 लाख योनियों में गुजरने के पश्चात हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और संतों द्वारा ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। साधारण समाज में अगर कोई वस्तु कठिनाई से प्राप्त होती है तो हम उसकी खास कदर करते हैं, सच है। और अगर कोई वस्तु सरलता से प्राप्त होती है तो उसकी हम इतनी कदर नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास सोना हो या कोई हीरा हो तो आप बड़े सावधानी से उसे रखोगे, गोदरेज की अलमारी में रखोगे, बैंक के सेफ में रखोगे, तो साधारण अखबार वगैरह को आप छुपा कर थोड़ी रखते हो। तो उसी प्रकार ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसका सदुपयोग करने के बजाय हम दुरुपयोग करते हैं। अगर हम यज्ञ का पालन करें तो जो देवता हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे और इस प्रकार उनके सहयोग के द्वारा समाज में संपन्नता भी प्राप्त हो सकेगी। आज स्थिति यह है कि हमें आर्थिक उन्नति चाहिए, हर प्रकार की सफलता चाहिए, पर हम किसी प्रकार से यज्ञ का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। ये है समाज का दुर्भाग्य। और आज हम देख सकते हैं कि समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रही है। आखिर जो हमारी आवश्यकताएं हैं ये तो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं, ये तो हमें नहीं भूलना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, माया दक्षिणा प्रकृति स्वीते साचराचरम। ये जो प्रकृति है ये मेरे अधीन है, मेरे इशारे से चल रही है। जैसे कि मान लो अन्न अन्न की प्राप्ति केवल जब होगी, जब वर्षा की प्राप्ति होगी। जहां तक वर्षा का प्रश्न है, ये तो हमारे विज्ञानियों के हाथ में नहीं है। अगर कोई विज्ञानी ये कहे कि हमारे हाथ में है तो आपको धोखा दे रहा है। कई साल पहले एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने दावा किया था कि हम हमारे विज्ञान के द्वारा वर्षा को संभव कर पाएंगे, वर्षा की प्राप्ति कर देंगे। पर जब उन्होंने करने का प्रयास किया तो वो इस क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो तो हमें परम भगवान की कृपा से प्राप्त हो रही है। आप थोड़े घंटों के लिए बिजली का उपयोग करते हो और आपको हर महीने बिल आ जाता है। भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी आजकल लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि पिछले 3 महीनों में वहां की पावर कंपनीज ने अपने पावर के रेट लगभग दुगना कर दिया है कई स्थानों में। तो वहां भी लोग चिल्ला रहे हैं, देखो बिजली इतनी महंगी हो गई है। थोड़े घंटों के लिए बिजली इस्तेमाल करते हो आप तो आपको महीने के अंत में बिल आ जाता है। छोटा घर है तो कम आएगा, बड़ा घर है तो ज्यादा आएगा। आप पानी का इस्तेमाल करते हो और आपको महीने के अंत में पानी का भी आपको बिल भरना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम थोड़ी देर के लिए बिजली पानी इत्यादि का उपयोग करते हैं, हमें उसके लिए बिल भरना पड़ता है। और अगर आप बिल नहीं भरोगे तो क्या होगा, आपका कनेक्शन कट जाएगा। ठीक है, चाहे भारत में रहते हो या किसी और विश्व के किसी कोने में, बिल नहीं भरोगे तो आपका बिल कट जाता है। पर हम कभी सोचते नहीं कि सूर्य के देवता विवास्वान की कृपा से हमें कितनी रोशनी प्राप्त हो रही है। आप समझो, आपको 5:15 बजे से शाम के 6 बजे तक 13 घंटे का अगर बिजली का बिल भरना पड़े तो आपका बिल कितना आएगा। अगर आपको चंद्रमा द्वारा जो रोशनी मिलती है, तारों द्वारा जो सहायता मिलती है, इनका बिल भरना पड़े तो कितना भरना पड़ेगा। पर हम इतनी गहराई से सोचते ही नहीं, पर हमें सोचना चाहिए। तो भगवद गीता में स्थापित किया जा रहा है कि ये जो 33 करोड़ देवता देवियां हैं, परम भगवान के अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं, जो परम भगवान का सहयोग दे रहे हैं। और हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम परम देवताओं के प्रति भी, देवताओं की संतुष्टता के लिए भी हम यज्ञ का पालन करें। ये देवता जो है परम भगवान के अधीन है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए वो परम भगवान के समान या स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए ब्रह्म संहिता एक बड़ा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मा जी ने अनेक स्तुतियों के द्वारा परम भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। कहते हैं अनेक ईश्वर हैं, पर जो परमेश्वर है वो केवल एक ही है, जिनका नाम है कृष्ण, कृष्णात्यु भगवान स्वयं। और सर्व कारण कारण वही है हर चीज के कारण, चाहे व्यक्ति शाकाहारी हो या मांसाहारी। जो सुविधा हमें चाहिए वो तो प्रकृति द्वारा ही प्राप्त हो रही है। शास्त्र में तो कहा गया है कि हमें शाकाहारी होना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पर ध्यान से देखा जाए, दूध मक्खन अन्न फल सब्जियां ये सब तो हमें पृथ्वी द्वारा प्राप्त हो रही है। दूध मक्खन वगैरह प्राप्त होता है गाय की कृपा से। पर कहने का तात्पर्य यह है कि सब सुविधा प्राप्त हो रही है क्योंकि परम भगवान की प्रकृति के कारण। और इसलिए कहा गया है कि हमें यज्ञ जरूर करना चाहिए। इसलिए इस तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। तो बड़े स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि हमें इन सुविधाओं का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। हर चीज के असली भोक्ता हैं परम भगवान। जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपोसम सर्वलोका बहेश्वरम। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकती हैं सिर्फ परम भगवान और देवताओं की कृपा से। हमारी आवश्यकता की पूर्णता बहुत कठिनाई से हो रही है, जैसे कि आप खुद देख रहे हो, खास करके भारत हमारे देश में पानी कम होते जा रहा है। आजकल कई इलाकों में टैंकर से पानी आना पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट हमने पढ़ी थी कुछ 6 महीने पहले, जिसमें कहा गया था कि पूरे विश्व में 20 साल बाद पानी की बहुत कमी हो जाएगी। क्यों? हम देख रहे हैं कई स्थानों में अन्न इत्यादि की कमी है और प्रकृति हमें अनेक रूपों से कष्ट देती है। 7 प्रकार के कष्टों से कोई नहीं बच सकता। 4 गैं, जन्म मरण, बुढ़ापा, बीमारी आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश है। जैसे कि प्रकृति हमें सताती है कई रूपों से। कई बार बाढ़ आ जाता है, कई बार भूकंप आ जाता है, कई बार सूखा हो जाता है। ये सब क्यों होता है? प्रकृति द्वारा हमें कष्ट जब भुगतना पड़ता है, जब पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ जाता है और यज्ञ का पालन कम होते जाता है। आज अगर हमें समाज में सफलता चाहिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दिव्य ज्ञान के आधार पर हम जीवन को आगे बिताने का प्रयास करें। जैसे कि महाराज ऋषभदेव पूरे पृथ्वी के राजा थे, उनके 100 पुत्र थे। ऋषभदेव जी, जिनके विषय में हम भागवतम के 5वें स्कंद में पढ़ते हैं, इन्हें भगवान का अवतार माना जाता है। इनके पिता का नाम था महाराज नाभि और माता का नाम था मेरु देवी। तो एक समय 1000 साल पूर्व उनके माता पिता यज्ञ कर रहे थे इस भावना से कि भगवान उनके खानदान में जन्म लें। भगवान उनके यज्ञ से बहुत ही प्रसन्न हो गए थे और भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए, ये तो असंभव है, आखिर कौन हो सकता है भगवान के समान, पर मैं ही तुम्हारे बेटे के रूप में तुम्हारे खानदान में जन्म दूंगा। तो भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, भगवान की तो पूरी प्रजा ही उनकी औलाद है, तो 100 पुत्र उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं। और ऋषभदेव जी ने यह सोचा कि उनका यह कर्तव्य बनता है कि वो अपनी औलाद को, समाज को दिव्य ज्ञान का उपदेश भी दे। जैसे कि भागवतम के 5वें स्कंद में कहा गया है कि माता पिता को, अपने बच्चों को, गुरु को, अपने शिष्यों को ये दिव्य ज्ञान देना चाहिए, जिसके सहयोग से वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति या छुटकारा प्राप्त कर सकें। ये उनका बड़ा अवश्य कर्तव्य है। आज अफसोस की बात है कि हम इस जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते। तो भगवान ऋषभदेव जी ने कहा, नाहम देह देह बाजब लोके, हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम लोग पशुओं के समान इस जीवन का उपयोग मत करो, पर तपस्या का पालन करो, भगवान की प्रशंसा के लिए, खुशी के लिए। तो कई बार लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम यज्ञ करेंगे, अगर हम तपस्या करेंगे, तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, हमारे लिए क्या है। तो इसका उत्तर भी शास्त्र में प्राप्त होता है। उत्तर यह है कि इसके बदले में तपो दिव्य पुत्र येन सत्वम शुद्धेन स्मार ब्रह्म सौख्यम अनंतम, इसके बदले में आपको जो सुख प्राप्त होगा, जो आनंद आएगा, वो केवल बढ़ते ही जाएगा, या दूसरे शब्द में असली सुख और आनंद प्राप्त होगा। तो यज्ञ के द्वारा, तपस्या के द्वारा हम केवल असली सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे। और अगर हम भगवान द्वारा इन सभी सुविधाओं को प्राप्त करें और यज्ञ के रूप में अर्पण नहीं करें, तो गीता का क्या निर्णय है? गीता का निर्णय है निश्चय रूप से आप चोर माने जाओगे। हमें ये सुनना शायद अच्छा नहीं लगे, शायद कईयों को लगे कि हम किसका अपमान कर रहे हैं, पर अपमान नहीं कर रहे, हम केवल गीता के संदेश को यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपकी आमदन हो और आप उसमें से टैक्स नहीं भरो, तो सरकार का अधिकार रहता है आपको सजा देने के लिए। सच बात है, इसलिए हम आमदन पर टैक्स भरते हैं इत्यादि। तो उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ करो, सब सुविधाएं तुम्हें प्राप्त हो रही है, इसके बदले में यज्ञ करो। आप अपने शरीर को देखिए, उदाहरण के लिए जो आंखें, बुद्धि, कान, हाथ, हृदय, जो सुविधाएं इस शरीर में हैं, ये कौन बना सकता है? हम कई बार कहते हैं आज विज्ञानियों ने बड़ी उन्नति कर ली, मानते उन्होंने उन्नति की है, पर ये जो आपका हमारा शरीर है, जो टेक्नोलॉजी इस शरीर में गई है, क्या कोई व्यक्ति इसकी तुलना कर सकता है? नहीं कर सकता। और इसके पीछे किसका हाथ है, किसका दिमाग है? अवश्य ही परम भगवान का दिमाग है, इनके इनकी बुद्धि है। दूसरे शब्दों में हमें परम भगवान और उनके अधिकार प्राप्त प्रशासकों के द्वारा अनेक सुविधाएं प्राप्त हो रही है, और हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम इसके बदले में यज्ञ करें। अब अगला प्रश्न यह है कि किस प्रकार का यज्ञ हमें करने चाहिए। सबसे पहले हम सबको भोजन करने की आवश्यकता है। हजारों साल पूर्व ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हैं, जो कि महाराज उत्थानापादा के पुत्र थे, और एक दिन जब वो अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, तो उनकी सौतेली माँ ने रोक दिया, कहा तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। छोटे बेटे थे, क्षत्रिय खून था, उन्होंने इसका बड़ा अपमान महसूस किया, घर रोते रोते अपनी माता के पास। माता ने कहा बेटा मैं तो तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती, पर भगवान दे सकते हैं। बेटे ने पूछा कहाँ प्राप्त होते हैं भगवान? माता ने कहा सुना जाता है संतों के द्वारा कि भगवान जंगल में प्राप्त होते हैं। बेटे ने निर्णय कर लिया मुझे भगवान को जरूर प्राप्त करना है, और जंगल की ओर रवाना होना शुरू हो गए। जैसे ही अपने महल से निकल रहे थे, वहां पहुंच के नारद मुनि जी ने कहा हे बालक, इतने गुस्से में तुम कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूं भगवान को खोजने के लिए। नारद मुनि जी ने कहा ये भगवान को ढूंढने की उम्र थोड़ी है तुम्हारे लिए, तुम तो 5 साल के हो, खेलो कूदो, भगवान को तो बुरी उम्र में जाके खोजना। ध्रुव ने कहा, अगर तुम मेरा सहयोग देना चाहते हो भगवान को ढूंढने में, तो मैं आपसे बात करने को तैयार हूं, नहीं तो मुझे छोड़ दो अकेले। तो नारद मुनि जी ने जब देखा कि ये बालक बड़ा दृढ़ है भगवान को खोजने में, तो उन्होंने साधन दिया, ये शिक्षा दी, जिसके द्वारा वो भगवान को आकर्षित कर सकेंगे। उन्होंने ये मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ये बताया कि किस प्रकार मिट्टी और जल से भगवान का एक स्वरूप बनाकर उसका चिंतन कर सकते हैं। और ध्रुव महाराज जी गए मधुवन जंगल में, जहां की उन्होंने बहुत गहरी तपस्या का पालन किया। पहले महीने हर तीसरे दिन खाते थे क्या, वो फल जो कि जानवर बंदर खाते हैं जंगल में। अगले महीने हर एक छठे दिन खाने लगे क्या, वो पत्ते जो कि पेड़ से गिरते हैं। तीसरे महीने बिल्कुल पत्ते खाने भी बंद कर दिया। जल पीते थे 9 दिन में एक बार। खैर आज ये संभव नहीं है आपके लिए या हमारे लिए, तो हम ये कह रहे भी नहीं है, पर एक यज्ञ है कि हम ये निर्णय करेंगे हम प्रसाद ही खाएंगे। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप पत्रम पुष्पम मुझे अर्पण करो। भगवान ये नहीं कहते कि केवल समोसा कचौड़ी पकौड़ा, अपनी योग्यता के अनुसार जो भी आप बना सकते हो, शाकाहारी भोजन भगवान के चरण कमलों में अर्पण कर सकते हो यज्ञ के द्वारा। और जब आप इसे अर्पण करते हो तो ये क्या बन जाता है, ये शाकाहारी भोजन बन जाता है प्रसाद। जब आप प्रसाद खाते हो तो फिर इसका क्या लाभ होता है, प्रसाद खाने के द्वारा जो बुद्धि है, मन है, इंद्रियां है, खुद ही खुद शुद्ध होने लग जाती हैं। और अगर आप प्रसाद खाते जाओ और कुछ भी और मत करो, प्रसाद खाते जाओ तो आस्ते आस्ते अनुभव करोगे कि आपकी बुद्धि जो है तेज हो जाएगी, और आपके हृदय में ये जिज्ञासा उठेगी, क्या क्या है मनुष्य जीवन का कर्तव्य, मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं ठीक है या मुझे कुछ सुधारना चाहिए। और जब इस प्रकार के विचार आपके हृदय में प्रकट होंगे, और अगर ये विचार शुद्ध होंगे तो आपको भक्तों की संगत प्राप्त होगी, जिसके द्वारा आपको और अधिक ज्ञान मिलेगा, जिसके सहयोग से आप जीवन को सुधारने का प्रयास कर सकते हो। दूसरे शब्दों में एक यज्ञ है कि हम शाकाहारी भोजन खाएं जो कि भगवान को भोग लगाए, और इसके खाने से मन इंद्रियां बुद्धि शुद्ध होंगी, और शुद्ध बुद्धि के साथ आप ठीक समझ सकते हो, ज्यादा आसानी से समझ सकते हो कि हमारा क्या स्वरूप होना, क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो यज्ञ का पालन बहुत अवश्य है। हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार 4 मुख्य युग हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इस समय हम कलयुग में जी रहे हैं। कृष्णों के विषय में कहा गया है, और ये लक्षण जो हैं, इनका वर्णन शास्त्र में हजारों साल पूर्व किया गया था। जैसे कि श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं कि 5000 साल पूर्व नैमिषारण्य के जंगल में एक समय बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा था। नैमिषारण्य आप आज भी जा सकते हो, लखनऊ के निकट है, दिल्ली से 1 रात का सफर। तो अनादि काल से उस जंगल वन में आध्यात्मिक चर्चा होते आई है। तो आज से 5000 साल पूर्व हजारों संत वहां उपस्थित थे, और संत जो थे वो देख सकते थे कि कलयुग के क्या लक्षण होंगे। जैसे हम कोई ज्योतिषी के पास जाते हैं ये पता लगाने के लिए क्या बीता है क्या बीतेगा, जो आध्यात्मिक संत हैं उनके पास ये योग्यता थी जिसके द्वारा वो देख सकते थे कि कलयुग के क्या लक्षण होंगे। तो उन संतों की सभा हो रही थी और उन्होंने एक संत सूत गोस्वामी नाम के अपने नेता के रूप में चुना। और संत श्रीमद भागवत में कहा गया है कि कलयुग की जो प्रजा है उनकी आध्यात्मिकता में ज्यादा रुचि नहीं होगी, झगड़ेलू होंगे, छोटी छोटी बात में अनबन हो जाएगी। आज वही हम देखते हैं। आप लोगों को हैरान होगा ये देखकर कि जो भगवत में कलयुग के लक्षणों की भविष्यवाणी है जो संतों ने 5000 साल पहले दी थी आज सच निकल रही है सारे विश्व में, क्योंकि ये भगवतम जो है ये पूर्ण भगवान द्वारा ये शिक्षा प्राप्त हुई है। तो कलयुग में आध्यात्मिकता में ज्यादा लोगों की रुचि नहीं है, तो इस वातावरण में भगवान ने एक बड़ा सरल साधन दिया है यज्ञ का, और वो है भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। अगर आप जब आपको भूख लगती है तो आपके सारे अंग कमजोर होते हैं, हाँ सिर कमजोर है, हाथ कमजोर है, पैर कमजोर है, शरीर में ताकत नहीं है, पर आप एक ही स्थान में खाना डालते हो पेट में और सारे अंगों में तंदुरुस्ती आ जाती है। एक वृक्ष में हजारों लाखों पत्ते हैं पर आप जड़ में पानी पिलाते हो और पानी हर पत्ते तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार परम शास्त्रों का निर्णय है, अगर हम परम भगवान श्री कृष्ण जिनके अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं देवता और देवियां, अगर हम उनकी सेवा करें तो इसके द्वारा सारे देवता देवियों को भी हम प्रसन्न कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप पिता की सेवा करो तो पूरी औलाद की सेवा मानी जाती है, और इस युग में यज्ञ का साधन है भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। भगवान के अनेक नाम हैं और भगवान ने नामों में पूरी शक्ति डाली है, पौनी शक्ति नहीं, आधी शक्ति नहीं, पूरी शक्ति डाली है। और जब आप इन नामों का उच्चारण करो तो इसके द्वारा आप यज्ञ का पालन कर रहे हो, यह है यज्ञ का साधन। और हर प्राणी मात्र बड़ी सरलता के साथ इसका पालन कर सकता है, ना तो भौतिक शिक्षा की आवश्यकता है, ना खूबसूरती, ना धन की, केवल श्रद्धा और भगवान में वचनों में विश्वास की आवश्यकता है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप कृपा करके यज्ञ का पालन कीजिएगा, यज्ञ के द्वारा हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी और यही असली साधन है सुख शांति प्राप्त करने का। ये उपाय हमें बिना किसी भौतिक कीमत के प्राप्त हो रहा है और इसका कृपा करके लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।